अध्याय दो। घोड़े पे होंदा ओ हाथी पे जीन। कागुरु पा लगी। लोटन बहेलिए ने नागर गुरु को कबीर चौरा की ओर से आते देख हाथ जोड़कर कहा, मस्त रहा। नागर ने आशीर्वाद देते हुए लोटन के पीछे देखा कि पीठ पर होंदा लिए एक घोड़ा और जीन कसा एक हाथी खड़ा है। उन्हें राजा के 25-30 सिपाहियों ने घेर रखा है। उसने लोटन से पूछा, का हाल चाल हो, ई कैसन तमाशा बनवले हुआ। लोटन नागर के समीप बढ़ाया और हंसकर धीरे से बोला, राजमाता का हुकुम हो और का सुनल की नाही, कंपनी बहादुर भाग गयल। नागर की उत्सुकता बढ़ गई। उसने लोटन का हाथ थामकर जहां आजकल ज्ञान मंडल यंत्रालय का भवन है वहीं बने एक चबूतरे पर बिठा दिया। नगर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दो दिन से तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। राजा चेस सिंह से जुर्माना वसूल करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं कलकत्ता से काशी आया था। राजा प्रजा सभी घबराए हुए थे। राज्य की सेना आक्रमण होकर हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और नगरवासी निरुत्साह थे। चबूतरे पर बैठकर लोटन ने धीरे धीरे धीमे स्वर में नागर को बताया कि सबके घबराए रहने पर भी राजमाता पन्ना ने अपना दिमाग कैसे ठीक रखा। गली गली में लड़ाई के लिए उन्होंने सब महाजनों को बुलाकर किस तरह अपने घरों में 10-10 20-20 सिपाही छिपा रखने के लिए राजी किया और किस तरह इन तैयारियों की खबर पाकर वॉरेन हेस्टिंग्स रातों रात चुनार भाग गया। हाथ की उंगली से सामने इशारा करते हुए उसने कहा, अब ना पता चलल गुरु साहेब बाबा वही भूसा वाली कोठरी में रुकल रहला। जब हम ई खबर राजमाता के देहली ता ओ कहने की बस यही मौका हो, हाथी पर जीन कसता और घोड़ा पर होंदा। जब में मालूम हुए कि साहेबवा घबराए के भागल हो, इतने से बनारसीन के फेर जोश आ जाये। सुनैन गुरु लड़िकवा का चिल्लाए हो अन और ओहर देखल वदन सहुआ आपन बाल बच्चा लेहले कहाँ जात हो। ए सारे के या गैली त कहवा देलस कि धरे नहीं हुआ। तनी पूछा कि घरे नहीं रहला त अब आए कहाँ से गैलना। लोटन चबूतरे से कूदा। नागर ने भी उसका अनुकरण किया। इतने में बेलगाम घोड़े की तरह चंचल और गुलाब के फूल से रंगीन चहरी सहुआजाई ने जेवरों की पिटारी और भी जोर से बगल में दबाते हुए बिजली की तरह चमक कर कहा, मर किनौना। मांग और माथे पर सिंदूर की मोटी सी तह जमाए और सिर पर आवश्यक वस्त्रादि से भरी कंबल की गठरी उठाए हथनी सी भारी भरकम बड़ी सहुआइन ने मेघ गर्जन किया, बज्जर परे। बड़ी सहुआइन की 20 वर्षीय रोग कतर पुत्र सुदीन और छोटी सहुआइन की 9 वर्षीय पुत्री गौरा ने क्षितिज के दो छोरों की तरह अपनी माताओं की प्रतिध्वनि की ओर तमाकू के पिंडा। उनके पिता लबदन साहब रह तो जा सारे कहते हुए उन लड़कों पर बरस पड़े जो जुलूस बनाए चिल्लाते जा रहे थे, घोड़े पे होंदा ओ हाथी पे जीन, जल्दी से भाग गैल। सब परिवार साव जी इससे अधिक नहीं सुन सके। उन्होंने समझा कि लड़के उन पर व्यंग कर रहे हैं। जेवर की पिटारी को होंदा और कंबल की जीन बताकर उनकी पत्नियों को घोड़ी और हथनी कह रहे हैं। साव जी ने मन ही मन बिना सुने ही लड़कों के नारों की अधूरी पंक्ति भी पूरी कर ली थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि जल्दी से भाग गैल के बाद लबदन सुदीन ही है। वह सचमुच घर छोड़कर भाग भी रहे थे। व्यंग 16 आने सही समझकर उन्हें क्रोध हो आया। वह जुलूस में सबसे पास वाले एक छोटे से लड़के पर हाथ का डंडा चला बैठे और एक हाथ चलाने के बाद चबूतरे की टेक लेकर हाँपने लगे। लकड़ी आते देख लड़का छलका फिर भी छोर छू जाने से छिलोर सी लग गई। सावजी को पागल समझकर उधर लड़का हंसने लगा और इधर सावजी साढ़ की तरह करा कर रो पड़े। उनके गाल पर करारा तमाचा पड़ा था। हिलते हुए दो दांत बाहर छिटक पड़े थे। मुंह से रक्त की छीण धारा सी बह रही थी। उन्होंने आंख उठाकर देखा कि नागर गुरु सामने खड़े पूछ रहे हैं, लड़का के काहे मरला बोल, ए सारे से पूछा कि ई भागत काहे रहला। लोटन बहेलिए ने कहा, लबदन साहब विकट संकट में पड़े, आज उनकी सालगिरह क्याई की खासी ग्रह दशा आ गई। सवेरे से ही घर में जो किचकिच चली, उसने सांझ होते होते यह रंग दिखाया। उनका लड़का फिरंग रोग से पीड़ित था, उसके मुंह में छाले पड़ गए थे। साहब जी फिरंग रोग का अर्थ नहीं जानते थे, परंतु संदेह करते थे कि यह रोग कैसा होता है, और यह भी समझते थे कि वह बहुत ही घृणित। इसलिए सवेरे आंख खुलते ही बेटे का मलिन मुख देख उनका जी खटा हो गया। उन्होंने क्रोध से घूरते हुए बेटे को देखा। बेटे ने समझा कि पिता इशारे से उसका हाल पूछ रहे हैं। उसने विश्व की सारी करुणा अपनी मुख मुद्रा में बटोरते हुए पिता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए रुधे हुए गले से कहा, बाबू थुकत नाही बनत, बड़ा कष्ट हो। मन की सारी घृणा और क्रोध को पिघले शीशे से प्रतप्त वाणी में घोलते हुए बाप ने उत्तर दिया, तो से थुकत नहीं बनत तन नहीं सही, दुनिया तो तोरे मुंह पर थुकत हो। बेटे ने यह जवाब सुना तो मुंह बनाकर वहां से हट गया, परंतु उसकी जननी ने जो पास ही बैठी मसाला पीस रही थी, इतनी ही बात पर महाभारत मचा दिया। ऐसे पैने पैने वचन वाणों की वर्षा आरंभ कर दी कि साव जी का कलेजा जर्जर हो उठा। उन्होंने जल कर कहा, कलमुई भैंस बिहाने बिहाने काने के जड़ी चरचराए लगल। बड़ी सहुआई ने भी उसी वजन में जवाब दिया, निगोड़ा कुर निर्वशा, बिहाने बिहाने लड़का के कोसे लग गए, जे बिहाने एक नाव ले ले ओके दिन भर अन्न का दर्शन न होए। बात कुछ अंश तक सही थी। साव के सुमपन के कारण वास्तव में लोग सवेरे उनका नाम नहीं लेते थे, इसलिए सहुआइन की यह बात उनके कलेजे में बर्छी की तरह चुभ गई। वर्षगांठ का झमेला न होता तो वह कुछ उत्तम मध्यम किए बिना कदापि न मानते, परंतु पूजन के समय दोनों पत्नियों के साथ ग्रंथि बंधन आवश्यक था। अतः बड़ी सहुआइन के मुँह फुलाने की आशंका से उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कड़वे काड़े से अपमान का प्याला पीते हुए भी पत्नी को मनाना आरंभ कर दिया। छोटी सहुआइन ने भी आकर सब पत्नी को समझाया, आखिर कहला ता अपने बेटवा के ना कोई पराये के तो नहीं जाए द। अंततः बड़ी सहुआइन शांत हुई, घर का वातावरण पुनः साधारण हुआ। साव जी पूजा पाठ के फेरे में पड़े। नगर में दो दिन से हड़ताल रहने के कारण बेचारे नवग्रह पूजन और हवन की सामग्री भी न मंगा पाए थे। पड़ोसियों से मांग जांच कर किसी तरह सामान भी जुटाया तो पंडित ने पूजा करने आने से इनकार कर दिया। कहला भेजा, नगर की स्थिति ठीक नहीं है, राजा अपने ही महल में बंद है, मलिच्छों की सेना सड़क पर चक्कर लगा रही है, मैं ऐसा खन चक्कर नहीं कि चौखट के बाहर पैर रखूं, यदि प्राण संकट में डाल कर जाऊं भी तो सीधा तो दृढ़ दमड़ी का मिलेगा ना। साव ने जो यह बात सुनी तो उनके भी छक्के छूट गए। वह स्वयं अनगढ़ अनवसर और बेहुदी वार्ता को ही खरी खरी कहना समझते थे। उन्होंने जो पंडित जी का निखरा निखरा संदेश सुना तो खरा बोलने का उनका हौसला पस्त हो गया। उधर छोटी सहुआइन को पंडित के उत्तर से अपना सौभाग्य सूर्य अस्त होता हुआ प्रतीत हुआ। वह अस्त व्यस्त हो उठी। साव की तम्बाकू के पिंड जैसी काली और स्थूल काया से आग की रेखा के समान सड़ते हुए उन्होंने गदगद गले से कहा, तो ही न रह ता धन रह के का करी, दूसरा पंडित बुलावा। 5 पैसे का सीधा देने का वचन देने पर दूसरा पंडित आया। दोनों पत्नियों के साथ गांठ बांधकर साव ने सावधानी से मंत्र पढ़ते दक्षिणा के स्थान पर जल चढ़ाते पूजा समाप्त की। हवन आरंभ हुआ। घी की कमी से आग दहक नहीं रही थी, गोरा पंखे से आग सुलगा रही थी। सहसा चिंगारियां उसके हाथ और मुंह पर आ पड़ी। सबके मुंह से सहानुभूति सूचक ध्वनि हुई, परंतु साव जी ने हंसते हुए छो भरी वाणी में कहा, बिटिया एक चिंगारी में तो तू धीरज छोड़ दे लू, जब सती होए के हुई तब तू का करबू। पंडित हक्का बक्का होकर साव का मुंह निहारने लगा। गोरा बिना कुछ समझे हंसने लगी, परंतु उसकी माँ का जी जलने लगा। बाहरी आदमी के सामने लड़ तो सकती नहीं थी। उसने छनक कर साव के दुपट्टे से अपनी चादर की गांठ खोल दी और चमक कर खड़ी हो गई। साव भी अपनी भूल समझ गए, पर तीर हाथ से छूट चुका था। वह असहाय की तरह छोटी सहुआइन का मुंह निहारने लगे। बड़ी सहुआइन चौहान ने सौत का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, आखिर कहलर तो अपनी बिटिया के ना कोई पराये के तो नहीं जाएगा, और खुली गांठ फिर से बांध दी। छोटी सहुआई ने वक्र दृष्टि से सौत को देखा परंतु कुछ बोली नहीं। हवन बिना और किसी दुर्घटना के समाप्त हो गया, परंतु साव के सिर की गर्दिश अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। वह भोजन करने बैठे कि लोटन बहेलिये ने गली में से आवाज दी, साव जी हो ए लबदन साव। लबदन साव ने झरोके से नीचे झाका, देखा कि राजा चेत सिंह का अंग रक्षक लोटन बहेलिया जरे की डोरी पड़ी और सोना जड़ी कटीदार पगड़ी सिर पर रखे, हरा अंग रखा पहने, कमर में गुलाबी फटे से तलवार फंसाए, हाथ में फरसा लिए उन्हें आवाज दे रहा है। उन्होंने धीरे से गौरा को बुलाकर कहा, बिटिया कह द बाबू घरे न हवन। उसने सिर निकाल कर पिता की बात दोहरा दी, लौटे तक कह दिया डोरी पर आवे, राजमाता का हुक्म हो, बहेलिये ने कहा और पैर आगे बढ़ाया। राजमाता के इस संदेश में साव को अनप्रह वज्रपात की ध्वनि सुनाई दी। उन्हें आशंका हुई कि यह बुलाहट उनसे रुपया ऐठनी की हुई है, वह चिंता में पड़ गए। लबदन साव ने रामदाने का लेहुआ पैसा में चार की बानी बोलते हुए काशी की गलियों में घूम घूम कर व्यापार आरंभ किया था और कौड़ी कौड़ी जोड़कर नखास पर हलवाई की दुकान खोली थी। जो जो उनका उदर स्फित होता गया, त्यो त्यो बाजार में उनकी दर चढ़ती गई और वह दमड़ी पर चमड़ी निछावर पर बैठे उसी पैसे पर राजा की दृष्टि लगी देख वह बिल्कुल ही घबरा उठे। छोटी सहुआइन ने उन्हें सांत्वना दी, संकट में बचने का रास्ता बताया और कहा, घबड़ेले काम न चली, रुपया पैसा जमीन में गड़ल हो और कौनो चिंता नहीं, दूर चारठे गहना जौन ऊपर हो ओके ले ल, और कुछ कपड़ा लत्ता सदे बांध ल, चल चला हमरे नैहर, ई आफत पटाई जाए ता लौट आए। साव को बात पसंद आई, वह बोरिया बंधना बांध अपनी ससुराल कर्ण घंटा की ओर चले, परंतु रास्ते में यह कांड हो गया। उन्होंने समझ लिया कि अब जान किसी प्रकार नहीं बचती, इसलिए बहेलिये की बात सुनकर उन्होंने आंसू भरी दृष्टि से एक बार नागर की ओर देखा और फिर लाठे की तरह सीधे उन दोनों के चरणों पर गिर पड़े। नागर को दया आ गई, परंतु उसने कर्कश स्वर में पूछा, बोल बोल लड़का के काहे मरल। साव ने पड़े पड़े ही हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हमारा तनिको दोष नहीं हो गुरु, हमरे भागे पर लड़कवा हमार हंसी उड़ावत रहला, तुहार हंसी उड़ावत रहला। नागर ने आश्चर्य प्रकट पूछा, वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वॉरेन हेस्टिंग के पलायन की बात से साव की हंसी कैसे उड़ाई गई। साव ने लज्जावश अपनी पत्नियों के संबंध में घोड़ी और हथनी विषयक अपनी कल्पना पर पर्दा डाल दिया, केवल इतना ही कहा, तहु ताज सुनत रहला गुरु, लड़कवा का कहत रहला तहु कहा, नागर बोला। छे भरी दृष्टि से इधर उधर देखते हुए साव ने इतना ही कहा, ले अब का कहीं, लड़कवा यही कहत रहला, घोड़े पे होंदा ओ हाथी पे जीन, जल्दी से भाग गए ले लबदन सुदीन। नागर और लोटन दोनों ठटक कर हंस पड़े। नागर ने कहा, दत तेरी की, साहू का समझना कि जिनका तुक सुदीन के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकत, जा भाग यहाँ से। नागर ने साहू को ठोकर लगाई और स्वयं आगे बढ़ा। लड़कों की भीड़ ने नारा लगाया, घोड़े पे होंदा ओ हाथी पे जीन, जल्दी से भागे गैल वॉरेन हस्टीन। साव जी ने मुंह बनाकर कहा, ऐ